हे गाइस, तो आज हम उन पांच इनकम सोर्सेस की बात करेंगे जिससे आप अपनी वेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम शुरुआत से देखा जाए, यानी कि 90s के टाइम पे, जिस टाइम पे कोई भी रिसोर्सेज नहीं हुआ करते थे अवेलेबल, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, तो उस ज़माने में भी लोग अमीर हुआ करते थे। मगर कैसे? 90s के टाइम पे, यानी कि 1890s के टाइम पे, जिसके पास मैक्सिमम से मैक्सिमम ज़मीन हुआ करती थी, लैंड हुआ करता था, वो ज़्यादा अमीर हुआ करता था। बिकॉज जितनी ज़्यादा वो खेती करेंगे, उतनी ज़्यादा वो प्रोडक्ट, उतने ज़्यादा फूड ग्रेन्स वगैरह उगा पाएंगे और वो बेच के काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। जितनी ज़्यादा ज़मीन, उतना ज़्यादा पैसा कमा देते। फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, जितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज लगने लग गई, फैक्ट्रीज से है ना ज़्यादा काम होने लग गया। अब मैन पावर थोड़ी सी कम हो गई कि मैन को, यानी कि मैन की अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी एज ए लेबरर, मगर मशीन्स की ज़्यादा पावर लगती थी। अब मशीन ज़्यादा काम करने लग गए। अब इसके बाद आता है हमारी स्टेज, 21st सेंचुरी। ये फेज़ है इंफॉर्मेशन एज है। यहाँ पे जिसके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी, ज़्यादा कलेक्टिव ऑफ डाटा होगा, वो ज़्यादा अमीर होगा। तो फर्स्ट आया लैंड, देन सेकंड आया इंडस्ट्रीज, यानी कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है एंड ऑल। द थर्ड इज़ इंफॉर्मेशन एज, लाइक मी। इस वक्त मैं आपसे अपनी जितनी भी जो मैंने सब कुछ पढ़ा है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ थ्रू द इंफॉर्मेशन ऑन एंकर, Spotify, iTunes and different on cloud basis service. So इसमें क्या, अभी रिसेंटली खबर में आया कि जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन यूजेस जिसकी होती है, मतलब जिसके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन या डाटा बेस है, वो सबसे ज़्यादा रिच अर्न करता है, लाइक गूगल, Amazon और अलीबाबा एंड मैनी अदर मैनी थिंग्स इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। ये सारी इंफॉर्मेशन बेस्ड सर्विसेज हैं। यहाँ पे है ना किसी लैंड का यूज़ नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई जा रही, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन का यूज़ किया जा रहा है, 1 person to another person। हर एक आदमी को एक दूसरे से कनेक्ट किया जा रहा है नॉर्मल इनटेंजिबल एसेट्स के थ्रू, मतलब सिर्फ और सिर्फ दूर से ही, एक ऐसे डिवाइस से जो सिर्फ दूर से दूर हम कनेक्ट हो पा रहे हैं, एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। लाइक मी, इस वक्त मुझे नहीं पता इस वक्त आप कहाँ पर बैठ के सुन रहे होगे, चाहे अमेरिका, इंडिया, न्यूयॉर्क, एशिया, मैनी अदर प्लेसेस। सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन एज एंड दिस इज़ द टाइम टू मेक एंड अर्न मनी। सो तो स्टार्ट करते हैं 5 इन रियल इनकम से। तो पहले बात करेंगे हम फर्स्ट एज की। पहले के ज़माने में क्या होता था, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होती थी वो ज़्यादा अर्न करता था। मगर आज भी ऐसा है, ज़मीन की कीमतें भी बढ़ रही हैं उसी हिसाब से, जिस हिसाब से इंफॉर्मेशन की भी एज बढ़ रही है और इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं, वैसे ही ज़मीन की कीमतें भी बढ़ रही हैं। अगर देखा जाए तो अगर आप किसी भी मॉनेटरी सिटीज़ के अंदर कोई भी अपना मकान खरीद के उसे रेंट पे दे देते हैं या ना ज़मीन को रेंट पे दे देते हैं, तो आप काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं। और ये एक ऐसा बेनिफिट है जिससे ना आपको हर महीने आपको एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम मिलेगी। पैसिव सोर्स ऑफ इनकम के जो आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, यानी कि आपको एक बार खरीदने, वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड द मंथली रिटर्न यू कैन गेट फ्रॉम इट। सो और क्या हो सकता है, और हर एक इन्वेस्टर यही चाहता है कि वो अपनी इनकम को बार बार बढ़ाता जाए कंपाउंडिंग इफेक्ट से। और सही मायने में तो अगर देखा जाए तो जो भी रियल एस्टेट के जो बिजनेसेस होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा टैक्स बेनिफिट्स दिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब ये उनके अंदर टैक्स बहुत कम दिया जाता है। एज़ कम्पेयर टू बिजनेसेस। अगर हम बिज़नेस की बात की जाए तो 2018 या 2019 तक 30% टैक्सेस हम गवर्नमेंट को पे किया करा करते थे। उसके बाद अब जैसे स्लो डाउन आया वगैरह वगैरह, थोड़ा टैक्स कम हो गया था, 30-22% में भी हो गया था मे बी, मैं आई एम नॉट श्योर बिकॉज मैंने भी थोड़ा है ना बिंज वॉचिंग, आई थॉट मैंने भी थोड़ा सा देखा ही था जिससे मुझे थोड़ा याद रह रहा है इस वक्त। तो हम इससे हम अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। सेकंड बात करते हैं स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट एक कोई जुआ नहीं है। अगर कोई बोलेगा ये जुआ है तो भाई वो पागल इंसान है, क्योंकि वो जो समझना नहीं जानता उसके लिए वो जुआ ही है। अगर हम वॉरेन बफेट की बात करें तो दुनिया के थर्ड रिचेस्ट पर्सन है और वो बहुत बड़ी एक अपनी कंपनी चलाते हैं जिसका नाम है बर्कशायर हैथवे, जिसका शेयर प्राइस स्टार्ट हुआ था मे बी $100 या $1,000 से, और आज उसके शेयर की कीमत है $1,00,000। आई मीन इट्स टू कूल ना। अगर देखा जाए तो उस टाइम पे अगर एक शेयर खरीदा होता तो आज 20 साल बाद या 30 साल बाद आप मिलियनेयर बन गए होते और आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न भी मिल रहा होता। तो हम किस तरह से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? अगर देखा जाए तो हम अपनी है ना इंडस्ट्री के अंदर ही पैसे लगाएं। जैसे कि अगर कोई डॉक्टर है तो वो अपनी फार्मेसिस की कंपनीज में इन्वेस्ट करें जिससे उसे आकाशी अच्छी खासी नॉलेज हो किस तरह से कौन सी दवाइयाँ ज़्यादा बिक रही हैं, कौन से लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदना पसंद कर रहे हैं। ये सब पूरा डिमांड और सप्लाई पे ही बेस्ड होता है स्टॉक मार्केट। लोगों के बिहेवियर को दिखाते हैं कि किस तरह से है ना स्टॉक मार्केट ऊपर और नीचे जा रहे हैं। अगर लोग ज़्यादा चीज़ें अग्रेसिवली खरीदें तो स्टॉक मार्केट ऑफकोर्स ऊपर ही जाएगा, और लोग अग्रेसिवली इन चीज़ें नहीं खरीद रहे या न चीज़ें को अवॉइड कर रहे हैं तो वो अपने आप स्लो एकदम नीचे चले जाता है। तो ये भी हमें धीरे धीरे समझना पड़ेगा, ये एक ह्यूमन बिहेवियर के डिसाइड से ही नहीं होता पूरा। इसके अंदर हमें कई सारी चीज़ें देखनी पड़ती जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैनेजमेंट बिहेवियर और बहुत सारी चीज़ें, जिससे हम सीख सके कि है ना किस तरह से है ना हम कंसिस्टेंसी के साथ स्टॉक मार्केट से अर्न कर सकते हैं, और ये एक बहुत बेस्ट तरीका भी है। तो आ जाते हैं हम अपने तीसरी चीज़ पे जिसका नाम है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड क्या होता है? एक्चुअली बेसिकली ये 90s के टाइम पे ही बनाया गया था। आई डोंट नो, मुझे उस बंदे का नाम याद नहीं आ रहा जिसने इंडेक्स फंड को इन्वेंट करा था फर्स्ट टाइम, बट ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ और अब हर कंट्री के अंदर है ये। तो इंडेक्स फंड वो फंड होता है जो पूरी कंट्री की इकोनॉमी को डिसाइड करता है, यानी कि एक बेस्ट कंपनियों के एक मिक्सचर को दिखाता है कि तुम्हारी कंट्री किस तरह से परफॉर्म कर रही है। लाइक हमारे अगर इंडिया में देखा जाए तो निफ्टी 50 और सेंसेक्स। निफ्टी 50 वो 50 कंपनियों को दिखाता है कि पूरे इंडिया की बेस्ट 50 कंपनियां को है ना एक एवरेज अमाउंट में दिखाते कि ये अब इतने अच्छे से परफॉर्म कर रही है। प्लस माइनस डेली होता है, मगर अगर हम पहले का निफ्टी 50 देखें मींस 1998 या 1997 का, तो स्टार्टिंग हुआ था 100 रुपीज़ से, और अब हम जाके देखें तो वो ऑलमोस्ट अगर मार्च से पहले देखें तो 12,000 था। अगर हम इस चीज़ को कंपेयर करें इंडेक्स फंड को और बैंक के रिटर्न को या FD के रिटर्न को, तो ये बहुत ज़्यादा है। उससे हम देख सकते हैं कि किस तरह से निफ्टी 50 ज़्यादा रिटर्न देता है एज़ कम्पेयर टू बैंक इंटरेस्ट। और देखा जाए तो ये पूरे लूप के साथ काम करता है। अगर आप देखेंगे कि अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं किसी ऐसी जगह, नहीं, अगर आप अपने पैसे को धीरे धीरे सेव कर रहे हैं लाइक अपने बैंक में सेव करते हैं, तो बैंक भी है ना सारे पैसे को अपने पास नहीं रखता, वो अपने कस्टमर्स को देता है जो लोन लेने आ रहे हैं, और दूसरा वो भी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है जिससे उसे भी रिटर्न मिले और वो भी अपने बैंक को ग्रो करे। तो ना क्यों ना आप ही डायरेक्ट फंड में क्यों ना इन्वेस्ट करें। ये ज़्यादा बेस्ट अच्छा तरीका है जिससे आप कंसिस्टेंसी के साथ अपने इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि एकदम से आपका पैसा बढ़ जाएगा, 100 का 200 हो जाएगा या 1000 का 2000 हो जाएगा, मगर एक कंसिस्टेंसी के साथ आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको एक बेहतरीन रिटर्न मिलेंगे, बैंक से ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा किफ़ायती भी। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हम चौथी इनकम सोर्स की बात करते हैं, और उसका नाम है डिजिटल एसेट्स। आखिर ये डिजिटल एसेट्स है क्या? अगर देखा जाए तो अगर आपने पहली इंटरनेट पे वीडियो देखी होगी तो किस पे देखी होगी? शायद आपका जवाब होगा यूट्यूब। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा डिजिटल एसेट्स है, क्योंकि अगर आप एक बार इसमें वीडियोस डाल देते हैं या ना डेली वीडियोस डालते रहते हैं तो आपको उसी वीडियो का आपको अर्निंग नहीं मिलती, आपको जो प्रीवियस जो अर्निंग होती है वो भी धीरे धीरे करके आपको मिलती रहती है। और ऐसे ही आपके ब्लॉग्स में होता है, व्लॉग्स में होता है। ब्लॉग क्या होता है अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ कि ब्लॉग वो चीज़ होती है, जैसे कि आप इंटरनेट पर कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हैं या कोई भी चीज़ लिख रहे हैं और उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो वो जो चीज़ें आपके सामने शो होती हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन आपके सामने शो हो रही है वो भी किसी इंसान ने लिखी है, ना कि किसी कंप्यूटर ने, और वो इंसान ही उससे कमा पा रहे हैं। जैसे अगर आपको किसी चीज़ के बारे में अच्छी खासी जानकारी है तो आप इसके बारे में अच्छे ब्लॉग्स लिख सकते हैं। लाइक अगर आपको अच्छे से आपको दवाइयों के बारे में पता है, उसकी अच्छी अच्छी डिटेलिंग्स के बारे में पता है, लाइक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है कि जो हमारी बॉडी में चाहिए ही होता है, हमारी बोन्स, हमारे माइंड और हमारी पूरे बॉडी की अच्छी फंक्शनिंग के लिए चाहिए ही होता है। तो आप इसके बारे में अच्छे से बता सकते हैं अगर आपको पता है तो। और क्या हो सकता है, जो कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप एक क्लाउड बेस में रख सकते हैं, मतलब इंटरनेट पे दिखा सकते हैं और वो चीज़ हमेशा रहने वाली है और उससे कंटिन्यूस अर्निंग मिलने जा रही है आपको, तो वो होता है हमारा डिजिटल असेट्स। ऐसे ही हम बात करते हैं पांचवे इनकम सोर्स की, वो है मेन बिजनेस। आखिर बिजनेस है क्या, बिजनेस किस तरह से चलाया जाता है, बिजनेस किस तरह से रन किया जाता है, ये सब कुछ डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे। सारे बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होते और सारे बिजनेस फ्लॉप भी नहीं होते, सारे बिजनेस को करने का तरीका अलग होता है। अगर हम उन तरीकों को अच्छे से सीख ले तो हम भी अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं। मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप कोई दुकानदार हो या कोई एक ऐसी शॉप खोल रखी हो और आप बोल रहे हो कि ये मेरा बिजनेस है, तो प्लीज़ इसे बिजनेस बोलना बंद करें, ये कोई बिजनेस नहीं होता, ये सेल्फ एम्प्लॉयड हो आप अपनी ही दुकान में बैठ के खुद काम कर रहे हो तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ना कि आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो। बिजनेस वो होता है कि अगर आप अपनी जगह को हटा भी दो, मतलब आप अपने आप को निकाल के साइड रख दो, तो अब भी आपका बिजनेस चलता रहे, आपको कोई काम नहीं करना पड़ रहा। अब यानी कि अब आपने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया जिससे आप अपने आप को हटा भी देते हो अपने बिजनेस से, तब भी आप अर्न कर रहे हो, तब भी आप एक ऐसी इनकम ले रहे हो हर महीने या हर साल, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स की बात करी जाए तो वो अपने बिजनेस से अपने आप को अलग कर चुके हैं पहले। उन्होंने एक पहले माइक्रोसॉफ्ट के एक सॉफ्ट डेवलपर सॉफ्ट डेवलप क्या था सॉफ्ट सॉफ्ट बेस्ड कंपनी खोली, एंड देन उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बना के सब जगह पब्लिश कर दिया और उस पर अपनी फीस लेते जा रहे हों। और इसी के अंदर एक और पॉइंट छुपा जाता है जो है सिक्स अर्निंग सोर्स, उसे कहते हैं लाइसेंसिंग, जो कि बिल गेट्स करते जा रहे हैं। अगर आप कोई भी माइक्रोसॉफ्ट का कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं या नहीं, कोई भी आप लैपटॉप या पीसी यूज़ कर रहे हैं एक्सेप्ट आईफोन या एप्पल के प्रोडक्ट को, क्योंकि उसके अंदर iOS यूज़ होता है। जितने भी बाकी के लैपटॉप या कंप्यूटर्स हैं उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट यूज़ होता आ रहा है। जो भी माइक्रोसॉफ्ट का डाटा बेस है ये हर कंप्यूटर से अपनी एक लाइसेंसिंग फी लेता है, जिससे हम अपने कंप्यूटर में या कोई भी डेस्कटॉप में सॉफ्टवेयर को रन कर पा रहे हैं। अगर आप सुनते हो विंडोज़, विंडो 10, विंडो 7, ये सारे माइक्रोसॉफ्ट के ही हैं। तो इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। तो शायद ये आपको ये थोड़ा इन्फॉर्मेशनल लगा हो और आपके काम आए। थैंक यू, स्टे सेफ़।